नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। महाभारत के जितने पात्र हैं वे सब पुरुवंशी कहलाते हैं। पुरुवंशी और पुरुवंश से कुरुवंश चला है। ययाति नाम का राजा था, उसके दो पुत्र हुए देवयानी से, यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा से तीन पुत्र हुए द्रुहु, अनु और पुरु। एक बार की बात है कि राजा ययाति के साथ देवयानी अशोक वाटिका में बैठी हुई थी। वहां देवयानी ने तीन सुंदर बच्चों को खेलते हुए देखा। इतने सुंदर बच्चे थे, देवयानी उनके पास गई और कहने लगी, हे बच्चों, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारी माता कौन है? तो उन छोटे बच्चों ने अंगुली से ययाति की ओर इशारा करते हुए कहा, हमारे पिता है। देवयानी को आश्चर्य हुआ कि ये तो मेरे पति हैं, ये मेरे पुत्र के पति, मेरे पुत्र के पिता हैं, इनके कहां से हो गए? उन्होंने पूछा कि हे आर्य पुत्र, ये जो बच्चे आपको अपना पिता मानते हैं, क्या ये सही है? तो ययाति ने कहा, हां मेरे पुत्र है। देवयानी के मन में ठनका लगा। देवयानी ने उन पुत्र बच्चों से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चों ने फिर कहा, हमारी मां का नाम शर्मिष्ठा है। इतना कहकर बच्चे बड़े प्रेम से ययाति के पास दौड़े आए और अपने पिता के चिपट गए। उस समय देवयानी उनके साथ थी, इसलिए राजा ने शर्म के मारे उनको गोद में नहीं लिया। बच्चे कहने लगे, पिताजी पिताजी, हमको गोद में ले हो, गोद में ले हो, रोज तो लेते हो, आज क्यों नहीं लेते? पिता का हृदय भर आया, पर देवयानी के डर से उसने गोद में फिर भी नहीं लिया। वे बच्चे रोने जैसा मुंह करके अपनी मां के पास गए। देवयानी सब रहस्य समझ गई। देवयानी ने जाकर शर्मिष्ठा को धमकाते हुए कहा, हे शर्मिष्ठे, तेरे पिता ने मेरी दासी बनाकर तुम्हारे मेरे वचनों को पूरा करने के लिए मेरे पास भेजा है, और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहां दासी के रूप में रहना। आखिर तू असुर की बेटी है ना, तो तेरा असुर भाव मिटा नहीं। तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? मैं एक ब्राह्मण की बेटी हूं, तुझे मेरा भय का पता नहीं है। तुम्हारे पुत्रों को देखकर मुझे तुम्हारी दासी होने पर भी राजपुत्र को जन्म देने का बड़ा दुख होता है। शर्मिष्ठा ने कहा, हे देवयानी जी, आप मुझसे बड़ी हैं, परंतु आप एक ब्राह्मण की पुत्री होकर क्षत्रिय राजा से संतान प्राप्त कर सकती हैं, तो क्या मैं एक राजा की पुत्री होकर राजा से पुत्र नहीं प्राप्त कर सकती? मेरा पुत्र प्राप्त करना न्याय के अनुसार है, मैं क्यों डरूं? मैंने तुम्हारे साथ इनको भी, ययाति को भी अपना पति माना है, तुम मेरे अपेक्षा श्रेष्ठ हो, लेकिन मेरा पुत्र होना न्याय संगत है। देवयानी ने फिर राजा को जाकर फटकारा कि आपने मेरा अप्रिय कार्य किया है, मैं यहां नहीं रहूंगी, पिता के पास चली आई, पिता को सब बात बताई। पिता ने उस समय कह दिया, यदि राजा ने ऐसा किया है तो वो बूढ़ा हो जाएगा, उसकी जवानी खत्म हो जाएगी। ययाति अपने ससुर के पास गया, हे महाराज, मैं बूढ़ा न हूं, ऐसा कोई उपाय बताओ। शुक्राचार्य जी प्रसन्न हो गए कि तुम्हारे 5 लड़कों में जो जवानी दे देगा, तुम्हारी जवानी आ जाएगी। हे जन्मेजय, ययाति ने अपने एक एक पुत्र से कहा, सबसे पहले देवयानी के पुत्र से कहा, हे यदु, देखो अभी मैं जवान हूं, बुढ़ा हो गया, झुर्रियां पड़ गईं, बाल सफेद हो गए, मुझे जवान होना है, तुम्हारी जवानी मुझे दे दो और 1000 वर्ष के बाद मैं अपनी जवानी तुमको लौटा दूंगा। यदु ने कहा, पिताजी, बेटा बाप को देते हैं कि बाप बेटे को देता है? मांगने का अधिकार बाप को बेटे से है? नहीं, बेटा बाप से मांग सकता है, क्योंकि वो छोटा है। बुढ़ापे में कितना दोष होता है, शरीर ढीला हो जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, शरीर पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, उठने बैठने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए बुढ़ापा मैं क्यों लूं और अपनी जवानी क्यों दूं? क्योंकि जीवन में एक बार ही आती है, बार बार आए तो एक बार आपको भी दे दूं? नहीं देते। बड़ा क्रोध आया, मेरा बेटा होकर मेरी वांछित वस्तु को तुम देने लायक नहीं हो तो मैं तुमको शाप देता हूं कि तुमको कभी राजगद्दी नहीं मिलेगी। यदु ने कहा, कोई बात नहीं, एक एक पुत्र से मांगा, किसी ने नहीं दिया। अंत में पुरु ने कहा कि पिताजी, आपको मांगना पड़े, ये लो हमारी जवानी, मर्जी आए तो देना, नहीं तो मत देना, हमें तो आपको प्रसन्न रखना है। पुरु ने अपनी जवानी दे दी। ययाति खूब लंबे वर्षों तक जवानी में रहा और फिर अपने बेटे को जवानी लौटाते हुए कहा कि बेटा, मैं तुमको कुछ खास बात सुनाता हूं। इस संसार में तुम भोगों के अंदर सुख देखते होंगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत दृष्टि है। संसार के विषयों का भोग कभी भी किसी को शांत नहीं कर सकता। आग में जितना घी डालोगे वो आग बढ़ती है। पृथ्वी पर जितने सोना चांदी स्त्रियां हैं, किसी एक व्यक्ति को मिल जाए तो भी उसकी कामनाएं पूरी नहीं हो सकती। सबसे बड़ा शूरवीर वो है जो अपने अंदर तृष्णा को निकाल करके फेंक देता है। देखो पुत्र, मेरा अनुभव सुनो, शरीर बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, लेकिन तृष्णा कभी शिथिल नहीं होती है। ये प्राणांतक रोग है, इसलिए इसको छोड़ने से ही सुख मिलेगा। प्रिय पुत्र, विषयों का सेवन करते करते 1000 वर्ष पूरा हो गया, लेकिन मेरी तृष्णा दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि अब मैं किस लोक में जाऊंगा, मैं अब हिरणों के साथ जंगलों में विचरण करूंगा, जाने कहां रहूंगा, मैं घबरा गया। इसलिए मैं जवानी तुम्हें देता हूं और साथ में तुमको सावधान भी करता हूं कि बेटा, इस जवानी के अंदर भोगों में मत पड़ना, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, अब ये तुम्हारी जवानी ले लो और जो मेरा ये राज्य है ये राज्य मैं तुमको देता हूं, तुम्हारे पुत्र संसार के अंदर बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। इतना कहकर ययाति पुत्र का राज्याभिषेक कर दिए, पुरु का राज्याभिषेक करके और अपने साथ कुछ ब्राह्मणों को लेकर जंगल में चले गए और जितने वहां पर मंत्री वगैरह थे सबको उन्होंने समझाते हुए कहा कि आप लोग मेरी बात सुनो, यदु मेरा सबसे बड़ा लड़का था लेकिन मैंने उसको राज्य नहीं दिया क्योंकि यदु ने मेरी आज्ञा नहीं मानी। जो अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता वो सत्पुरुषों की दृष्टि में गिरा हुआ पुत्र होता है, जो मां बाप की आज्ञा माने उनका हित करे उन्हें सुख पहुंचाए वही पुत्र होता है। सबसे छोटा बेटा है पुरु लेकिन इसने आज सबसे बड़े बेटे के स्थान को प्राप्त किया है, इसलिए मैं इसका राज्याभिषेक करता हूं। यदु के नाना शुक्राचार्य जी ने स्वयं मुझे वरदान दिया है कि जो तुम्हारी आज्ञा का पालन करके तुम्हारी जवानी को लौटा देगा वही तुम्हारा पुत्र कहलाएगा। तो मैंने बहुत संतुष्ट होकर पुरु का राज्याभिषेक किया है, अब मैं वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करता हूं। यदु तो राज्याधीन होगा, राज्याधिकारहीन होगा, तुर्वसु यवनों का राजा होगा, द्रुयु भोजों का राजा होगा, अनु से मिलिच्छ पैदा होंगे, लेकिन ये पुरु ही ऐसा होगा जो पौरव वंश चलाएगा और उसी से ही आगे जाकर मेरे वंश का संसार में नाम होगा। इतना कहकर ययाति जंगलों में चले गए, कंदमूल फल का सेवन करते थे, हरदम भगवान का भजन करते, देवताओं पितरों का तर्पण करते, खेतों में अन्न के कण को बीन बीन कर खाते और पहले अतिथियों को भोजन कराते उसके बाद बचा खुचा लेते थे। 1000 वर्ष उन्होंने व्यतीत किया, केवल जल के आधार पर जीवन निर्वाह किया। 1 वर्ष तक तो बिना सोए केवल वायु पीकर रहे, उसके बाद 1 वर्ष तक पंचाग्नियों के बीच में बैठकर तप किया। पंचाग्नि माने इधर इधर, आगे पीछे दाएं बाएं, 4 अग्नि तो एक सूर्य की प्रचंड गर्मी। 6 महीने तक 1 पैर से लेकर वायु पिया, सब जगह उनकी कीर्ति फैल गई और फिर वे शरीर छूटने पर स्वर्ग में गए। स्वर्ग में जाकर इंद्र मरुत वसु आदि ने उनका बड़ा सम्मान किया। 1000 वर्ष वहां बीत गए। एक दिन इंद्र उनके पास आए, तरह तरह की बातचीत हुई। इंद्र ने पूछा, हे राजन, आपने अपने पुत्र पुरु को जवानी लौटा दी और उसका और अपना बुढ़ापा वापस ले लिया, उसे राज्य दे दिया, उस समय आपने कोई उपदेश दिया क्या? ययाति ने कहा, हां मैंने उसको समझाया है कि देखो पुत्र, गंगा और यमुना के देश के बीच का राजा मैं तुमको बनाता हूं, सीमांत देशों का भोग तुम्हारे भाई करेंगे और ये बीच का राज्य तुम्हारा रहेगा। मैंने कहा, देखो पुत्र, क्रोधी व्यक्तियों से क्षमाशील व्यक्ति बड़ा श्रेष्ठ होता है, असहनशील पुरुष से सहनशील श्रेष्ठ होता है, मनुष्योत्तर जातियों से मनुष्य श्रेष्ठ होता है, मनुष्यों में मूर्खों से विद्वान श्रेष्ठ होता है, और किसी के बहुत सताने पर भी उसको सताने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए क्योंकि दुखी प्राणी का शोक सताने वाले का नाश कर देता है। कभी भी मर्म भेदी और कड़वी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। अनुचित उपाय से शत्रु को भी अपने वश में नहीं करना चाहिए। किसी को कष्ट पहुंचाना हो तो ऐसी बात तो पापी लोग बोलते हैं कि उसका सत्यानाश हो जाए, इसका ये हो जाए, ऐसे पापी लोगों की भाषा होती है। जो अपनी कड़वी तीखी मर्मस्पर्शी बातों के कांटों से लोगों के हृदय को कुदेरता है, उसका तो मुंह देखना भी पाप है, क्योंकि वह अपनी वाणी के रूप में एक पिशाचनी को ढो रहा है। ऐसा आचरण करना चाहिए कि सत्पुरुष सामने तो सत्कार करे ही, पीठ पीछे भी तुम्हारी रक्षा करे। दुष्ट लोग कोई कड़वी बात कहे तो सर्वदा उसे सहन करते जाओ, सहन करने में बड़ा लाभ है। सदाचार का आश्रय लो, सत्पुरुषों के व्यवहार को सीखो। वाणी से भी बाण वृष्टि होती है, जिस पर उसकी बोछारें पड़ती हैं वो रात दिन सोच में पड़ा रहता है, इसलिए ऐसी कभी वाणी मत बोलो। त्रिलोक में सबसे बड़ी संपत्ति प्राणी मात्र पर दया करना और उनके साथ मित्रता करना है। यथाशक्ति किसी को दिया जाए, नहीं तो मधुर वाणी को कभी मत छोड़ो, कठोर वाणी कभी मत बोलो, मीठी वाणी बोलो, सम्मान करो, दान करो, किसी से कुछ मत मांगो, यही सर्वश्रेष्ठ व्यवहार है। इंद्र ने पूछा, हे ययाति, आपने गृहस्थाश्रम का पूरा पूरा पालन कर लिया, फिर वानप्रस्थ स्वीकार किया, मैं आपसे पूछता हूं कि तपस्या में किसके समकक्ष हैं? ययाति ने कहा कि इन देवताओं में, मनुष्यों में, गंधर्वों में, महर्षियों में अपने समान तपस्वी मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता। इंद्र ने कहा, राम राम राम, तुम अपने समान बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव न जानकर तिरस्कार करते हो, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हो, तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया, यहां के सुख भोगों की सीमा तो है ही, जाओ यहां से, पृथ्वी पर गिर जाओ, अपने मुंह से तुम अपनी बड़ाई करते हो। ययाति ने कहा, ठीक है, यदि सबका अपमान करने से मेरा पुण्य क्षीण हो गया तो मैं यहां से संतों के बीच में गिरना चाहता हूं। इंद्र ने कहा, अच्छी बात है। फिर राजा ययाति पवित्र लोगों से धकेल दिया गया और स्थान न मिलने पर जहां अष्टक, प्रतार्दन, वसुमान, शिवी आदि तपस्या करते थे, उन स्थानों की तरफ गिरने लगा। अष्टक ने कहा, ए युवक, तुम इतने इंद्र के समान सुंदर हो, लेकिन तुम स्वर्ग से गिर रहे हो, हमको बड़ा आश्चर्य होता है, तुम क्यों गिर रहे हो, वहीं ठहर जाओ और विषाद तथा मोह छोड़कर हमें इसका कारण बताओ। इन सत्पुरुषों के सामने इंद्र भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, बोलो क्या बात है। तुम दुखी और दीन पुरुषों के लिए संत ही परम आश्रय है, तुम हमारे बीच में आ रहे हो, बताओ क्या बात है। ययाति ने कहा, हे महापुरुषों, मैं अपने किए हुए का पश्चाताप कर रहा हूं, मैंने सारे प्राणियों का तिरस्कार किया है, मैंने अपने आप को बहुत बड़ा तपस्वी माना, अपने मुंह से मैंने अपनी बड़ाई की है, मैं स्वर्ग से गिर गया हूं, मुझे बड़ा अभिमान था, और अभिमान तो नरक का मूल कारण होता है। सत्पुरुषों को दुष्टों का अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए। जो धन धान्य की चिंता छोड़कर अपनी आत्मा का हित साधन करता है, हे ऋषियों, वही तो समझदार होता है। धन पाकर फूलना नहीं चाहिए, विद्वान होकर अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने विचार और प्रयत्न की अपेक्षा देव की गति बलवती होती है, ऐसा समझकर संताप नहीं करना चाहिए, दुखों से जलना नहीं चाहिए, सुख में फूलना नहीं चाहिए, दोनों में सम रहना चाहिए। मैं इस समय मोहित नहीं हूं, मैं स्वर्ग से धकेला जा रहा हूं, मेरे मन में कोई जलन नहीं है, मैं विधाता के विधान के विपरीत तो जा ही नहीं सकता, इसलिए मैं बड़ा संतुष्ट हूं। हे अष्टक ऋषि, मैं दुख सुख दोनों की अनित्यता को समझता हूं, आज मेरे सामने दुख है तो कल सुख भी होगा, कल सुख था तो आज दुख हो गया, सुख और दुख झपेटे तो हरदम लगते रहते हैं, मैं बड़ा उन्मुक्त हूं इसलिए दुख मेरे पास कभी आता ही नहीं है। अरे आप तो अनेक लोगों में रह चुके ये याति जी, आत्मज्ञानी नारद के समान आप भाषण कर रहे हैं, आप अब तक किन किन लोकों में गए? मैं पहले पहले पृथ्वी में सार्वभौम सम्राट था, 1000 बरस तक महत लोकों में रहा, फिर 100 योजन लंबी चौड़ी सहस्रद्वार युक्त इंद्रपुरी में 1000 बरस तक रहा, फिर प्रजापति के लोक में जाकर 1000 बरस तक रहा, फिर नंदनवन के स्वर्गीय भोगों को लाख वर्षों तक भोगा, वहां से सुखों में आसक्त हो गया और पुण्य क्षीण हो गया और धन का भी नाश हो गया, जगत के सगे संबंधी सब हमसे छूटे में रहे, पुण्य क्षीण हो गया, देवताओं ने भी हमारा परित्याग कर दिया। हे ययाति महाराज, इतने लोकों में आप घूमे तो किन कर्मों से कौन से लोक मिला करते हैं और ये लोग कैसे हैं? देखो स्वर्ग के 7 द्वार हैं, 7 दरवाजे से स्वर्ग मिलता है, एक दान, एक तपस्या, एक शम, शम कहते हैं मन का नियंत्रण करना, दम माने इंद्रियों का नियंत्रण करना, एक लज्जा माने शर्म आनी, और एक सरलता और एक सब पर दया, ये 7 रास्ते स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने से हैं। बड़े सावधान रहना चाहिए, अभिमान से तपस्या क्षीण होती है, जो अपनी विद्वत्ता के अभिमान में फूले फूले फिरते हैं और दूसरों के यश को मिटाना चाहते हैं उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, उनकी विद्या में मोक्ष दान में असमर्थ रहती है। अभय 4 प्रकार, अभय के 4 साधन हैं, अग्निहोत्र, मौन, वेदाध्ययन और यज्ञ। यदि अनुचित रीति से अहंकार के साथ इनका अनुष्ठान होता है तो ये भय के कारण भी बन जाते हैं, इसलिए अनुचित रीति से अहंकार नहीं करना चाहिए। अनुचित रीति का अहंकार क्या और उचित रीति का मैं भगवान का हूं, यह तो उचित अहंकार है, बाकी सब अनुचित है। कभी कहीं सम्मानित हो जाए तो सुखी नहीं होना चाहिए, कहीं चलते अपमान हो जाए तो दुखी नहीं होना चाहिए। जगत में सत्पुरुष ऐसे लोगों की ही पूजा करते हैं, दुष्टों से शिष्ट बुद्धि की चाह निरर्थक है। मैं दूंगा, मैं यज्ञ कर लूंगा, मैं तुमको जान लूंगा, मैं ये मेरी ये प्रतिज्ञा है, इस तरह की बातें बड़ी भयंकर होती हैं, ऐसी बातें कभी नहीं बोलनी चाहिए। 8 ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी किन धर्मों का पालन करें कि मृत्यु के बाद वे सुखी हो जाएं? ययाति, जो ब्रह्मचारी आचार्य की आज्ञा के अनुसार अध्ययन करता है, गुरु सेवा करता है और ऐसी सेवा करे कि गुरु को आज्ञा ही न देना पड़े, पहले से ही वो जाग लेता है, पीछे सोता है, उसका स्वभाव बड़ा मधुर होता है। जो इंद्रिय जयी है, धैर्यशाली है, सावधान रहता है, प्रमाद रहित रहता है, उसे शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। गृहस्थ में जो अतिथियों को पहले भोजन कराता है, किसी वस्तु को दिए बिना नहीं लेता, वो सच्चा गृहस्थी होता है। स्वयं उद्योग करके फल फूल से अपनी आजीव, फल मूल से अपनी आजीव का चलाता है, पाप नहीं करता, दूसरों को कुछ न कुछ देता रहता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, थोड़ा खाता है, नियमित चेष्टा करता है, वो वानप्रस्थाश्रमी शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करता है। जो किसी कला कौशल भाषण चिकित्सा कारीगरी आदि से जीव का न चलाकर समस्त सद्गुणों से युक्त जितेंद्रिय और असंग है, किसी के भी घर नहीं रहता है, थोड़ा चलता है, अनेक देशों में अकेले और नम्रता के साथ विचरण करता है, वो सच्चा सन्यासी है। इस तरह से बहुत सी बातें हुई। देवता लोग शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं, अब मैं गिर रहा हूं, इंद्र के वरदान से मुझे आप जैसे सत्पुरुषों का समागम हो गया। अष्टक ने कहा, स्वर्ग में मुझे कितने लोग प्राप्त होने वाले हैं? अंतरिक्ष में अथवा सुमेरु पर्वत के शिखरों पर जहां भी मुझे पुण्य कर्मों का फल स्वरूप जाना है, वो सब मैं तुमको देता हूं, आप गिरे नहीं। यात्री ने कहा, ये क्या करते हैं, मैं एक क्षत्रिय हूं, आप मुझे अपनी तपस्या का दान देते हैं, दान लेना तो ब्राह्मण का धर्म होता है, मैं कैसे दान लूं। प्रतरदन ने कहा, एक दूसरे महात्मा ने, हे ययाति, मुझे अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक में जितने लोगों की प्राप्ति होने वाली सब देता हूं, आप न गिरे स्वर्ग में जाए। ययाति ने कहा, कोई भी राजा अपने समकक्ष व्यक्ति से दान नहीं लेता है, क्षत्रिय होकर दान लेना अधर्म है, अब तक किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय ने ऐसा काम नहीं किया है, इसलिए मैं भी नहीं कर सकता। तो वसुमान ने कहा, मैं अपने सभी लोग आपको प्रदान करता हूं। ययाति ने कहा, देखो ये क्रय विक्रय तो सर्वथा मिथ्या है, मैंने अब तक ऐसा मिथ्याचार कभी नहीं किया है, कोई भी सत्पुरुष ऐसा नहीं करते। शिवी ने कहा, तो फिर मैं औशिनर शिवी का पुत्र हूं, मैं औशिनर शिवी हूं, उसी नर देश का राजा, आप यदि खरीद बिक्री नहीं करना चाहते हैं तो मेरे पुण्यों का फल स्वीकार कीजिए। अरे ययाति ने कहा, अरे शिवी जी, आप बड़े प्रभावशाली हो, परंतु मैं दूसरों का पुण्य फल का उपभोग नहीं करना चाहता, दूसरे के वस्त्र नहीं पहनना, दूसरे के जूते नहीं पहनना, दूसरे के भोजन को नहीं करना, तो मैं तुम्हारा पुण्य कैसे ले सकता हूं। अष्टक ने कहा, अच्छा महाराज, एक एक के पुण्य लोग नहीं लेते तो सभी के पुण्य आप एक साथ स्वीकार कर लो। देखो भाई, मेरे स्वरूप के अनुसार प्रयत्न करो, सत्पुरुष तो सत्य के पक्षपाती होते हैं, मैंने तो कभी ऐसा किया नहीं, अब मैं आप सबका पुण्य कैसे लूं। अष्टक ने कहा, ये आकाश में सोने के 5 रथ किसके दिख रहे हैं, क्या इन्हीं के द्वारा पुण्य लोगों की यात्रा होती है क्या? हां, ये सुनहले रथ हैं, ये आपको पुण्य लोक में ले जाएंगे, आप इन रथों के द्वारा स्वर्ग की यात्रा कीजिए, हम लोग भी समय पर आएंगे। ययाति ने कहा, हम सभी ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए चलो हम सब साथ ही चलते हैं, देखते नहीं स्वर्ग का प्रशस्त मार्ग पड़ा है। ययाति स्वर्ग के अधिकारी हो गए, रथ में बैठकर चल पड़े, उनके धार्मिक तेज से स्वर्ग प्रकाशित होने लगा। तो शिवी का रथ आगे बढ़ रहा था, ययाति ने ययाति से पूछा कि राजन, इंद्र तो मेरा मित्र है, मैं समझता हूं मैं ही सबसे पहले उसके पास पहुंचूंगा, ये शिवी का रथ आगे क्यों बढ़ रहा है? ययाति ने कहा, शिवी ने अपना सर्वस्व सत्पात्रों को दिया है, दान तपस्या सत्य धर्म लज्जा ये सब शिवी में विद्यमान है, इतने होने पर भी इसने कभी अभिमान की छाया को छुआ तक नहीं है, इसलिए इसका रथ सबसे आगे बढ़ रहा है। अष्टक ने फिर पूछा, ययाति सच सच बताओ, आप कौन और किसके पुत्र हो? आप जैसा त्याग किसी ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय में नहीं सुना गया। ययाति ने कहा, मैं सम्राट नहुष का पुत्र ययाति हूं, और मेरा पुत्र पुरु है, जो इस पृथ्वी पर सार्वभौम सम्राट है, और मैं तुमको गुप्त बात बता देता हूं, क्योंकि तुम अपने हो, मैं तुम लोगों का नाना लगता हूं। इस प्रकार बातचीत करते हुए सब स्वर्ग में चले गए। जन्मेजय ने कहा, महाराज, ये इतना पवित्र पुरुवंश है, तो ये पुरुवंश आप हमको सुनाइए, क्योंकि इस पुरुवंश में हम भी तो पैदा हुए हैं। वैशंपायन जी ने कहा कि देखो, महर्षि द्वैपायन ने मुझे वंश सुनाने के लिए कहा था, उसे बहुत राजाओं का नाम लिया है, दक्ष से अदिति पूरे नाम लेते लेते कहा, इसमें एक हस्ती नाम का पुत्र हुआ, उसने हस्तिनापुर बसाया, इस वंश में दुष्यंत हुआ, दुष्यंत के भरत पैदा हुआ, और इस वंश में आगे जाकर संवरण नाम का एक पुत्र पैदा हुआ, संवरण के गर्भ से कुरु का जन्म हुआ, और कुरु से ये सब कौरव कहलाते हैं। इस वंश में जाकर एक प्रतीप नाम का लड़का हुआ, उसके 3 बेटा थे, देवापी शांतनु और वाल्लिक। देवापी बचपन से ही तपस्या करने जंगलों में चले गए, फिर शांतनु राजा हुए। शांतनु का बड़ा विचित्र प्रभाव था, किसी बूढ़े आदमी का स्पर्श कर दे तो जवान हो जाए, और किसी वस्तु में छू दे तो वो सोने की हो जाए, इसीलिए उनका नाम शांतनु पड़ा, क्योंकि वो सबको शांति देने वाले थे। शांतनु का विवाह गंगा के साथ हुआ और गंगा से देवव्रत पैदा हुआ, जो संसार में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। और भीष्म ने अपनी प्रसन्नता के लिए सत्यवती के साथ अपने पिता का विवाह करवाया, उससे दो पुत्र पैदा हुए, एक का नाम विचित्रवीर्य, एक का नाम चित्रांगद। चित्रांगद तो पहले से ही मारा गया, और विचित्रवीर्य जो हुआ उसकी दो स्त्रियां थी, अंबिका और अंबालिका। विचित्रवीर्य मर गया, उसके कोई संतान नहीं थी। अब सत्यवती ने सोचा कि भाई दुष्यंत का वंश खत्म हो गया, भरत का वंश खत्म हो गया, तब क्या करें। तो उन्होंने व्यास जी का स्मरण किया। स्मरण करने पर विचित्रवीर्य के बिना स्मरण किया और बुलाया और कहा कि देखो बेटा, तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य बिना संतान के मर गया, अब इस वंश की रक्षा करो। तो व्यास जी ने माता की आज्ञा स्वीकार करके अपने तपोबल के प्रभाव से अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु और इन दोनों की एक दासी थी, उस दासी से विदुर को जन्म दिया। और इधर व्यास जी के वरदान से धृतराष्ट्र के 100 बेटा हुए, उनमें 4 प्रधान थे, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और चित्रसेन। इधर जो पांडु था उसकी पत्नी का नाम कुंती था, उस कुंती से 3 पुत्र पैदा हुए, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। दूसरी पत्नी माद्री थी, उसके नकुल और सहदेव। पांडवों का विवाह द्रौपदी के साथ हुआ, द्रौपदी के गर्भ से 5 लड़का हुए। युधिष्ठिर की 1 पत्नी और थी, सबके 1-1 पत्नियां और थी, उनसे भी बलवान पुत्र पैदा हुए। अर्जुन का विवाह कृष्ण की पत्नी सुभद्रा के साथ हुआ, जिससे अभिमन्यु पैदा हुआ, जो बड़ा गुणवान और श्री कृष्ण का प्रीति पात्र था, माने प्रेम का, आशीर्वाद का पात्र था। नकुल और सहदेव से भी अलग अलग लड़के पैदा हुए। भीमसेन के हिडंबा से घटोत्कच नाम का पुत्र पैदा हुआ। इस प्रकार पांडवों के 11 पुत्र थे, परंतु वंश का विस्तार अभिमन्यु से हुआ। इनके अतिरिक्त अर्जुन के 2 पुत्र और थे, उलीपी से इरावान और चित्रांगदा से बब्रुवाहन। ये दोनों अपनी अपनी माता के साथ नाना के घर ही रहे, वहीं बड़े हुए और वहीं के उत्तराधिकारी हो गए। अभिमन्यु का विवाह विराट कुमारी उत्तरा के साथ हुआ। इसके गर्भ से मृत बालक का जन्म हुआ, जिसे भगवान ने जीवित किया। उसकी मृत्यु अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से हो गई थी, लेकिन भगवान के सामने उसका कोई प्रभाव नहीं रहा ब्रह्मास्त्र का। कुरुवंश के परीक्षीण होने पर इसका जन्म हुआ, इसलिए लोग इसको परीक्षित भी बोलते हैं। और जन्म लेकर इसने भगवान की परीक्षा की, इसलिए भी इसको परीक्षित बोलते हैं। परीक्षित की पत्नी माद्रवती के आप हैं बेटा जन्मेजय जी, और आपकी बहुष्टमा नाम की पत्नी से 2 लड़के शतानिक और शंकुकर्ण दोनों बैठे हैं। शतानिक के भी 1 पुत्र हो चुका है। इस प्रकार मैंने आपके पूरे पूर्ववंश का वर्णन कर दिया है। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मे जाए, इधर तो पूर्ववंश चल रहा है, इधर इक्ष्वाकु वंश में एक महाभीष नाम के बहुत बड़े राजा थे, परम वीर थे, अश्वमेध यज्ञ करके रासु यज्ञ के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त किया। एक दिन बहुत से देवता और राजर्षि, जिनमें महाभिषिक भी थे, ब्रह्मा जी की सेवा में खड़े हुए थे। उस समय गंगा जी वहां आई और वायु ने उनके सफेद वस्त्र को शरीर से कुछ खिसका दिया, तब वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपनी आंखें नीची कर ली, परंतु राजर्षि महाभिक ने उन्हें निशंक होकर लगातार देखने का काम किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाभिक, तुमको लाज नहीं आई? इस प्रकार तुम स्त्री को देखते रहे? अब तुम मनुष्य लोक में जाओगे, तुमने गंगा को देखा तो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी। तुम गंगा को ही देखते रहो, तुम वह तुम्हारा अप्रिय करेगी, और जब तुम उस पर क्रोध करोगे तभी तुम शाप से मुक्त हो करके तब तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। महाभिक ने कहा, हे ब्रह्मा जी, ये क्या हुआ कि देखो तुमने सभा की मर्यादा का उच्छेदन किया है, और हम भी बहुत दिनों से चाहते थे कि गंगा को पृथ्वी पर भेजा जाए और पुरुवंश की महिमा बढ़ाई जाए। तुम कोई इस विषय में विचार मत करो, इस विषय में कोई न कोई निमित्त बनने वाला था, तुम निमित्त बन गए, तुम जाओ, कोई कष्ट नहीं होगा। महाभिक ने सोचा कि ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी है तो मैं क्या करूं, तो मैं वहां से पुरुवंश के अंदर प्रतीप का पुत्र बनूं, क्योंकि प्रतीप उस समय बहुत बड़े सम्राट थे। तो प्रतीप के यहां जो शांतुन के रूप में उन्होंने वहां जन्म लिया। ब्रह्मा जी ने गंगा जी को भी लौटा दिया, और लौटाते हुए कहा, गंगा से कहा, देखो गंगे, 8 वसुओं को तुम्हें धारण करना पड़ेगा, वशिष्ठ के साप से वे श्रीहीन हो गए हैं, उनको तुम साप से मुक्त कर दोगी और तुम्हारे द्वारा एक बहुत बड़ा काम होगा। इस संसार में तुम एक ऐसे पुत्र को रख के जाओगी जिसकी सारी दुनिया प्रशंसा करेगी, तुम इस विषय में किसी प्रकार संकोच मत करो। गंगा जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं आप सबकी प्रसन्नता के लिए इन 8 वसुओं को धारण करूंगी और तत्काल इनको मनुष्य योनि से मुक्त करा दूंगी, और इन 8 वसुओं से अपने अपने एक एक अंश से एक वसु को यहां पृथ्वी पर छोड़ दूंगी, और उससे आपका ये धर्म का क्षेत्र बढ़ता जाएगा। और जैसा कि आपने कहा है कि वो अपुत्र रहेगा, तो वो अपुत्र ही रहेगा। इस प्रकार से सब तैयारियां हो गई, और जब अब विचार होने लगा कि कैसे क्या हूं, तो इधर पुरुवंश के राजा प्रतीप अपनी पत्नी के साथ गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन गंगा जी वहां आई, बहुत सुंदर रूप बनाकर आई, और जो है वो राजा प्रतीप के सामने बैठ गई। राजा प्रतीप ने उनको देखा, कहा, हे गंगा जी, आप यहां कैसे आई, आप इतने सुंदर स्वरूप में क्यों आई? तो गंगा जी उनके हृदय का भाव लेना चाहते थे। गंगा जी ने कहा कि हे प्रतीप, आपकी प्रशंसा हमने सुनी है, आपका तपोबल भी हमने देखा है, मैं आपके भावी पुत्र की पत्नी बनना चाहती हूं। तो प्रतीप ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे भावी पुत्र की पत्नी बन जाओ, लेकिन अभी तो मेरे पुत्र ही नहीं है। तो प्रतीप ने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या की, और फिर वही महाभिक जो ब्रह्मा जी की सभा के अंदर गंगा जी को देखे थे, वही जो है शांतनु बनकर के जन्म लिए, और उनका नाम शांतनु इसलिए पड़ा कि वे बचपन से ही बड़े शांत रहते थे। दूसरी बात, प्रतीप का वंश शांत होने वाला था, ऐसी अवस्था में इनका जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम शांतनु हुआ। शांतनु का जब जन्म हुआ, थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता ने कहा कि देख बेटा, अब मैं तो इस संसार से जा रहा हूं, तुम्हारे पास एक दिव्य स्त्री आएगी, तुम उससे कोई जांच पड़ताल मत करना, हमने पहले से ही उसे कह रखा है कि हमारे बेटे के साथ तुम्हारा विवाह होगा, वो जो कुछ भी कहे, जो कुछ भी करे, जो करे, तुमको उस विषय में कुछ नहीं कहना है, और उसे केवल स्वीकार करना है। क्या तुम इस शर्त को मान लोगी? कि मान लेंगे। इतना कहकर शांतनु को राजगद्दी पर बैठा दिया और वे जो है उनके पिता प्रतीप वनों में चले गए। अब मेरा इस राज्य से कोई संबंध नहीं है। अब राजा शांतनु का राजपद उनको मिल गया। आगे क्या होता है ये प्रसंग कल चलेगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण।